तो आपका कहना यह है कि यहाँ आते हैं तपोभूमि में तो मन करता है यही सब कुछ ठीक है, यही करना चाहिए। घर जाते हैं तो फिर ये लगता है वही ठीक है, वही करना चाहिए। ये सिद्ध करता है कि अभी ज़िंदगी की समझ नहीं है, जिसको महाराज जी विवेक कह रहे हैं। विवेक हमारे अंदर नहीं है, ये इसकी पहचान है। क्योंकि जो भी संसार में आया है, कोई व्यक्ति अपनी बुराई की नहीं सोचता, अपनी भलाई की सोचता है। जब साफ साफ पता लग रहा है कि एकांतवास के लिए आते हैं तो लगता है यही ठीक है, संसार में जाते हैं तो लगता है वही ठीक है, तो ये जो इसको दुविधा कहते हैं, ये दुविधा क्यों है? क्योंकि ज़िंदगी की ठीक समझ नहीं है, ना अपने बारे में कोई समझ है, ना ईश्वर के बारे में कोई समझ है। और लगता भी यदि हमको है कि हमको समझ है, तो वो समझ हमारी कच्ची है या इनकम्प्लीट है। जब तक आप अपने विज्ञान को, ईश्वर के विज्ञान को, मन के विज्ञान को, प्रकृति के विज्ञान को जब तक ठीक ठीक नहीं समझेंगे, तब तक ये दुविधा सारी ज़िंदगी आपके सामने खड़ी रहेगी और आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ऊपर ऊपर से अध्यात्म अपना भी लिया जाए, परंतु वो गहरे संस्कार बनाने में विफल होता है। जब ईश्वर की भक्ति करिए तो उसके लगता है संस्कार बन गए, जब संसार में विचरण किया, वहाँ भोग विलास किया, तो वो संस्कार उदय हो गए, तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही दुविधा में चली जाती है। और ये विज्ञान यदि सीखना है तो गुरु ही सिखा सकता है, या यूँ कह लें कि सत्पुरुषों की वाणी, उनके द्वारा रचित शास्त्र वही सिखा सकते हैं। तो इसीलिए उनको जब तक हम सिस्टेमेटिक तरीके से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे किसी ने यदि इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए जो उचित पढ़ाई है वो करनी ही पड़ेगी और उसको सीखना ही पड़ेगा। और हमने सीखा या नहीं सीखा, उसके लिए आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा में यदि सफल हो गए तब तो आपने ठीक सीखा, परीक्षा में यदि फेल हो गए तो आपने गलत सीखा। सीधी सी बात है। तो यहाँ आने के बाद यदि आपका मन करता है कि सादगी से रहूं, ईश्वर का सिमरन करूं, शास्त्र का स्वाध्याय करूं, ये आपको अच्छा भी लगता है और ठीक भी लगता है, तो घर जाकर भी यही ठीक लगना चाहिए। वहाँ दूसरी हालत होना चाहिए कि ये मेरी मजबूरी की ज़िंदगी है, बीवी बच्चों का पालन करना, पैसा कमाना, संसार की सुख सुविधाएं जुटाना, इसमें आपके मन के अंदर चार्म नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मजबूरी का जीवन, क्या करें, ये परिस्थितियां ईश्वर ने दे दी हैं, अब एक परिवार का पालन तो करना ही है, कर्तव्य है, तो आप उसको कर्तव्य भाव से करते हो, चाव के भाव से नहीं करते हो, ये अंतर आ जाता है। देखने में ऐसी लगेगा वो, लेकिन अंदर की जो सोच है आपकी, जो मन की स्थिति है, वो दूसरी तरीके की होगी। कि घर जाकर भी आपको फिर 5 महीने का वेट रहेगा कि 5 महीने कैसे पूरे हों, फिर मैं वहाँ जाऊँ। और यहाँ आकर जो आप एक उन्नति लेकर जाते हो विचारों में और संस्कारों में, तो वो उन्नति आपकी कायम रहे या वो बनी रहे, मेंटेन रहे, उसके लिए भी आप घर पर भी प्रयास करते रहते हो। उसके पीछे भी गंभीरता वही होती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, इसलिए मानसिक बेचैनी में तो अंतर आएगा, लेकिन आपके अंदर उत्साह कम नहीं होगा उस मार्ग पर चलने का। तो इसीलिए आप प्रभु से प्रार्थना भी करोगे, प्रभु ये जिम्मेदारियां कम कर ताकि जो जिंदगी का असली काम है उसको मैं पूरा कर सकूं। तो ये स्थिति आपके अंदर होगी। लेकिन आप जो कह रहे हो कि यहाँ आते हैं तो ये अच्छा लगता है, वहाँ जाते हैं तो वो अच्छा लगता है, ये सिद्ध करता है कि अंदर अभी विवेक स्थिर नहीं हुआ। हमने यदि पढ़ाई भी की है समता विलास की या किसी भी शास्त्र की, तो उसको गहराई से समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि महाराज जी ने इतना डिटेल्ड एनालिसिस किया है समता विलास के अंदर हर पहलू पर, कि जो व्यक्ति भी उसको गंभीरता से पढ़ेगा और उसमें से जीवन का निर्णय निकालने की कोशिश करेगा, मान लिया आपके अंदर यही संशय पैदा होता है या प्रश्न पैदा होता है ऐसा क्यों होता है, तो इसका उत्तर आपको समता विलास में मिल जाएगा, लेकिन उसका गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे कोई एक अच्छा स्टूडेंट टेक्स्ट बुक को पढ़ता है, उसका एम है कि मैंने 98% से कम नंबर नहीं चाहिए मुझे, मुझे इतने नंबर लाने हैं। उस दृष्टिकोण से वो जो पढ़ाई करता है, फिर किसी से पूछता भी है तो करके छोड़ता है फिर वो। तो वो सिंसेरिटी हमारे अंदर नहीं है। लग गया मन ठीक है, नहीं लगा तब भी ठीक है, तपोभूमि आ पाए तब भी ठीक है, नहीं आ पाए तब भी ठीक है, मन में सोच लिया बड़े काम थे इसलिए इस बार तपोभूमि नहीं जा पाए। मन में व्यथा होनी चाहिए भाई, क्योंकि आपके अंदर विवेक है तो आपके मन में व्यथा होगी कि जिस जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं मुझको ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया, वो लक्ष्य ही मुझसे छूट जा रहा है, और मृत्यु बीच में आ गई तो मेरे अगले जन्मों का क्या होगा, किस हालत में मेरा जन्म व्यतीत होगा। हो सकता है मनुष्य योनि ईश्वर मुझसे छीन ले क्योंकि मैंने उसका सदुपयोग ही नहीं किया। तो इसीलिए ये मसला बड़ा ही गंभीर है और गंभीरता से विचार करने वाला है, ये इतनी लापरवाही से सोचने वाला मसला नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो इसके लिए जो सोचने का तरीका है, तो सबसे पहले अपने बारे में यही है कि मुझको पता है जो काम भी मैं संसार में करता हूँ सोच समझ के ही करता हूँ, और उसका रिजल्ट मुझको पॉजिटिव चाहिए, सुखदायी रिजल्ट चाहिए, सफलता चाहिए। परंतु फिर भी मैं देखता हूँ कि कभी सफलता मिलती है, कभी विफलता मिलती है, कभी मन के अनुकूल रिजल्ट मिलता है, कभी मन के प्रतिकूल मिलता है। तो ये जो रिजल्ट है ये मेरे अंदर सुख पैदा करता है या दुख पैदा करता है, और चाहे कोई भी क्रिया क्यों ना हो, चाहे बच्चों का पालन हो, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आपका रोजगार हो, चाहे आपका खान पान हो, चाहे आपका पहनावा हो, हर चीज़ में ये द्वंद आपको मिलता है। मन अनुकूल यदि भोजन मिल गया घर में तो मन बड़ा खुश होता है, और मन के प्रतिकूल यदि भोजन मिल गया तो मुझको बेचैनी होती है, दुख होता है। और ये जो सुख दुख का अनुभव है ये मैं करता हूँ, और कह क्या देता हूँ मैं एक आम भाषा में कि मेरा मन बड़ा दुखी है, मन बड़ा बेचैन है। ये आपका स्टेटमेंट इसी प्रकार का है जैसे किसी का दिल तेज धड़क रहा हो और वो ये कहने लगे मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसको बड़ा तेज धड़कना पड़ रहा है, तो आम व्यक्ति भी कह देगा क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो, दिल भी कभी दुखी और सुखी होता है। लेकिन मन के बारे में नहीं कहता, वो कहता हाँ बात तो ठीक कर रहा है कि मन दुखी है मन सुखी है, जबकि दोनों ही स्टेटमेंट बेवकूफ़ी के हैं। सत्य क्या है यदि थोड़ा सा एनालिसिस करूँ तो बड़ा स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। मेरे मन में, मुझे याद है बचपन में, एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको, आयु रही होगी उस समय करीब 11-12 साल की। उस समय नाटक हुआ करते थे, तो रात्रि को वो नाटक शुरू होते थे, 9-10 बजे शुरू होते थे और 1 बजे तक वो ख़त्म होते थे। पहले पिक्चरें मेरा कम होती थी, टीवी और ये तो कुछ होते ही नहीं थे, तो बच्चों का मनोरंजन का साधन होता था वो नाटक देखना। तो नाटक मन पसंद होने वाला था उस दिन। मदर से पूछा नाटक देखने चले जाएं, उन्होंने कह दिया आज आज नहीं जाना। खैर अब जब परमिशन नहीं मिली तो मन महसूस के रह गए। जब तक नाटक चलता था 1 बजे तक, तो 1 बजे तक नींद ही नहीं आई। यही मन में याद आता रहा कि भाई नाटक चल रहा होगा, हमें जाने को नहीं मिला। तो बेचैन कौन रहा? मैं ही तो बेचैन रहा ना। लेकिन मैं इसका स्टेटमेंट ये दे दूंगा कि मन बड़ा बेचैन रहा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। मन के अंदर इच्छा उठ रही है, इच्छा उठने के कारण मैं बेचैन हो रहा हूं। मन के अंदर इच्छा जब नहीं उठी थी तो मैं चैन में था। इच्छा यदि पूर्ण हो जाती तो मुझको खुशी होती, इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो मैं 3 घंटे बेचैन रहा। तो सीखने की बात यह है, या यूं कहें कि विवेक की बात यह है कि मन के अंदर संकल्प उठता है और यह संकल्प उसी प्रकार से उठता है ऑटोमेटिकली जैसे कि दिल आपका धड़कता है। दिल एक पंप की तरह से ना, उसका ऑटोमेटिक उसमें से प्रेशर बनता है, दिल धड़कता है। मन के अंदर भी इसी प्रकार संकल्प उठते हैं, गायब होते हैं, उठते हैं और गायब होते हैं। तो इस दिल का भी प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है और मन का भी प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। इसीलिए कई जगह मन को दिल करके कह देते हैं, मेरा दिल नहीं लग रहा है। देखा ना आपने, अक्सर हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मेरा दिल नहीं लग रहा है। उसका दिल से मतलब होता है वहां पर मन से। तो मन के अंदर यदि इच्छा कायम है और वो पूर्ण करने का मौका नहीं मिल रहा है तो मुझको वो बेचैन करता है। तो जिस पर सुख का असर पड़ रहा है, जिस पर दुख का असर पड़ रहा है, जो चैन में है, जो बेचैनी हासिल कर रहा है, वो मैं हूं। और मेरी इस बेचैनी का, सुख का, दुख का कारण कौन है? वो मन है। तो इसीलिए मैं वो हूं जो मन का दृष्टा है, जो मन को देख रहा है, मन को जान रहा है, वो मैं हूं। अब ये जो मन की बेचैनी है, या यूं कहिए मन का जो संकल्प है, इसको मैं पूर्ण करना चाहता हूं और इस मन के संकल्प को मैं किसके द्वारा पूरा करता हूं? शरीर के द्वारा। कहां से पूरा करता हूं? संसार से। तो शरीर मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से है और संसार मेरे लिए साधन की तरह से है। जैसे रॉ मटेरियल होता है ना, मैंने यदि कोई लड्डू तैयार करना है तो हाथ पैरों का उपयोग करूंगा मैं, अपनी कर्म इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का। उसके पश्चात जो है वो पदार्थ खरीद के लाऊंगा संसार से, साधन तो संसार ही है, वो बनाऊंगा, बना के ज्ञान इंद्रियों से उसका स्वाद लूंगा, सारा हुआ नहीं, तब मन की जो इच्छा है वो पूरी होगी, तब मैं खुश होऊंगा। यही तो प्रोसेस है। और इस सारे प्रोसेस में हर चीज अलग है लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मन अलग है, मैं अलग हूं, देह अलग है, मन अलग है, संसार अलग है, देह अलग है, अलग अलग हैं ये, लेकिन सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये पूरी चेन है। और अविवेक क्या है? अज्ञानता क्या है? मैंने मन और तन को अपने साथ मिला दिया, अब मैं एक कॉम्पैक्ट यूनिट बन गया जिसको मैं मनुष्य कहता हूं। इसमें मनुष्य का मतलब है वो ना उसका मन अलग है, ना वो अलग है जो मन को देख रहा है उसका दृष्टा, और ना ये तन अलग है जिसके द्वारा वो मन की डिजायर पूरी कर रहा है। इन तीनों को उसने एक कर दिया। एक कर दिया तब ये क्या, तब ये क्या कहलाने लगा? मनुष्य। लेकिन यदि वाणी पढ़ें या कोई भी गीता पढ़ें, कोई शास्त्र पढ़ें, वहां इन तीनों चीजों को बिल्कुल अलग करके कहा गया। अब महाराज की वाणी क्या कह रही है? दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। दुखी जीव की पुकार सुनकर सतगुरु उसका जगत से उद्धार करने के लिए आए हैं। हम और सामाजिक प्राणी हैं, वो मनुष्य की बात करेगा, सदगुरु जीव की बात कर रहा है। और इन दो शब्दों को हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, ये दो शब्द तो अलग चीज है बिल्कुल। यदि आपने इन दोनों को अलग करके नहीं देखा तो आपको कभी समझ में नहीं आएगी कि संतरास क्या कह रही है और वाणी क्या कह रही है। सारी जिंदगी गाते रहोगे आप और ऐसे गोलमोल बने रहो, पूरी जिंदगी आपको कोई शास्त्र समझ में नहीं आएगा। हर वर्ड जो शास्त्र इस्तेमाल कर रहा है उसको समझना पड़ेगा कि ये शास्त्र में ये शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। नहीं तो 100 बार पढ़ लो समतावलास, हर वर्ड क्यों यूज किया गया, आपने ध्यान नहीं दिया उस पर गहरा मनन नहीं किया तो किसी निर्णय पर पहुंचोगे नहीं, सारी जिंदगी कंफ्यूज रहोगे। समझते ये रहोगे मैं बड़ा ही धर्मात्मा हूं, धर्म मार्ग पर चल रहा हूं, लेकिन धर्म की ABCD आपको आती नहीं। तो विचार करो जरा, गुरु को मैंने क्यों अपनाया है और गुरु आया क्यों है? वो साफ साफ तो कह रहा है कि दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। महा जी कह रहे हैं शरीर और संसार एक चीज है, दोनों एक साथ प्रकट होती है। तो जगत उद्धार से क्या मतलब हुआ? देह और संसार से इस जीव को मुक्त करने के लिए गुरु आया है। मैं जीव हूं, आप बताइए कि देह और संसार का उपयोग किस वास्ते करते हो? मन की डिजायर पूरी करने के लिए करते हो या क्यों करते हो? क्योंकि मन की डिजायर जैसे ही पैदा होती है वैसे ही मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, और जब तक मैं उसको पूरी ना कर लूं मेरी बेचैनी खत्म नहीं होती। जब बेचैनी खत्म होकर जब मैं शांत होता हूं उसको कहता हूं मुझे बड़ा सुख मिला। लेकिन कभी मैं सीधी सीधी बात नहीं सोचता, ये सुख नहीं मिला है मुझको, बेचैनी से मुक्ति मिली है। नहीं तो बेचैनी पैदा होने से पहले, इच्छा का संकल्प होने से पहले मैं सुखी ही था, मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यदि आप शास्त्रों के अनुसार सिस्टमेटिकली आप सोचते हो, सही चिंतन करते हो, इस विवेक के साथ चिंतन करते हो, तो आपको पता लगेगा कि सुख एक केवल लहर है और कुछ भी नहीं, दुख भी मात्र एक लहर है और कुछ भी नहीं, इसकी वास्तविकता तो नेचर में है ही नहीं। सुख और दुख नाम की वस्तु सारी सृष्टि में कहीं है ही नहीं, ये केवल मन की लहरों की तरह से हैं, या यूं कह रहे हैं संस्कारों की लहरों की तरह से हैं। आप इसको यदि एग्जाम्पल से समझे, ऐसे समझ लो, आप सब जानते हो जिसने कभी जिंदगी में तम्बाकू ना पियो, उसकी जीभ पे 2 पत्ती तम्बाकू की रख दो, उसका क्या हाल हो जाएगा? पूरा हमारा नर्वस सिस्टम सारा एक ही जैसा है ना सबका? 2 पत्ती यदि जीभ पे रख दी जाए आपका क्या हाल हो जाएगा? किसी को चक्कर आने लगेंगे, कोई तिलमिला जाएगा, ये क्या खिला दिया मुझको, समझ नहीं। लेकिन जो तंबाकू में रस लेना शुरू कर देता है, संस्कार बन जाते हैं उसके कि इसमें रस है, उसको बिना तंबाकू के जीवन नीरस नजर आता है। और तंबाकू की 2 पत्ती जीभ पे रख दी जाए तो उसकी खुशी की हालत देखो, अमृत मिल गया उसको। तो अब बताइए, जो चीज़ तंबाकू में है ही नहीं, रस जिसको कहते हैं या सुख जिसको कहते हैं, वो उसको मिल रहा है। तो तंबाकू में है या उसके संस्कार हैं ये? तो ये संस्कार मेरे बनाए हुए हैं, ये असली चीज़ नहीं है ये, और मैं इसमें भटक रहा हूँ। जब बड़ा हो जाता हूँ, कभी कैंसर हॉस्पिटल में मुझको विजिट करने का मौका मिलता है, तो वहाँ पता लगता है कि अरे, इस हॉस्पिटल में 1,000 पेशेंट हैं, इसमें से 100 पेशेंट तो कैंसर के वो हैं जो तम्बाकू के कारण जिनको कैंसर हुआ है, मुंह का कैंसर हुआ है। अब मेरी आंख खुलती है, अरे तम्बाकू इतनी खतरनाक चीज है कि जिंदगी बर्बाद कर दे रही है। आंखों के सामने 100 एग्जाम्पल है उसके। तब घबराता है वो, अरे ये तो मैंने गलती कर ली। फिर जोर लगाता है, इससे मैं छुटकारा कैसे प्राप्त करूं। फिर तरह तरह के ये कष्ट उठाता है वो, धीरे धीरे आदत छोड़ता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है तो साल भर में पार भी पा जाता है उसका, कोई 2 दिन में भी पार पा जाता है। मन भले ही मचलता रहे उसका, शरीर भले ही उसका परेशान करता रहे उसको, लेकिन वो जोर लगा के त्याग कर देता है। कोई एक हिट में त्याग कर देता है, कोई साल भर लगता है, वो 1 साल में त्याग कर देता है उसका। तो एग्जैक्टली हमारी हर बारे में यही स्थिति है। ये तो मैं केवल एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ आपको, ताकि ये चीज़ सरलता से समझ में आ जाए। ये हर बारे में हमारी यही स्थिति है। इसीलिए इस जीव ने जितने भी भोगवादी संस्कार बनाए हैं, चाहे वो पारिवारिक संस्कार हो, चाहे वो सामाजिक संस्कार हो, चाहे वो मेटीरियलिस्टिक हो, चाहे वो व्यक्तिवादी हो, लोगों से भी तो हमारा मोह होता है, वस्तुओं से भी मोह होता है। तो ये जितने भी हमने संस्कार बनाए हैं, ये हर संस्कार इस जीव के लिए मुसीबत है। क्यों? क्योंकि हर संस्कार मन के अंदर तरह तरह की डिजायर पैदा करता है, वो डिजायर के संकल्प पैदा करता है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार जितनी तेज गति से वायु चलती है, समुद्र का पानी उतनी तेज गति से लहरें किनारे पे फेंकता है। तो जितनी बड़ी बड़ी डिजायर आपके अंदर पैदा होंगी, जितने आप प्रगतिवादी इंसान हो, दुनिया में अपने आप को बड़ा सफल देखते हो, संतों की निगाह में तुम उतने ही बड़े मूर्ख हो, क्योंकि जिंदगी की रेड़ तुम्हें अपने हाथों से लगाई है। तुमको होश ही नहीं है तुमने अपने जीवन में क्या जहर घोला है। बड़े खुश हो रहो, मैंने बड़ी प्रगति की है, बड़ी पढ़ाई की है, बड़ा नाम कमाया है, बड़ा पैसा कमाया है। तो गहरे पतन के गर्त में आप चले गए और आप खुश हो रहे हो कि मैंने बड़ी उन्नति की है। माता पिता भी बड़े खुश हो रहे हैं, मेरे बेटे ने बड़ी उन्नति की है। लेकिन जब गुरु के साथ, गुरु के संपर्क में आते हो, गुरु की बात जब समझ में आती है, तब आप माथा पीटते हो, मैंने जिंदगी में करा क्या? ये गहरी विफलता के अलावा मैंने कुछ करा ही नहीं है, मेरा पूरा का पूरा जन्म मूर्खता में चला गया है। और वाणी महाराज जी की बिल्कुल ठीक कह रही है कि बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन सो खोई। ये विवेक वाला काम नहीं किया मैंने, इसलिए सारा कर्म मेरा पशु कर्म है। इंसान होकर तूने पशु कर्म किया है, इससे ज्यादा लज्जा की बात क्या होगी? लेकिन क्या कोई इस तरह से समझता है? क्या कोई इस तरह से सोचता है? इसीलिए यदि आप जो विवेक समता विलास आपकी बुद्धि में पैदा करना चाह रहा है, अर्थात समता विलास के माध्यम से, गुरु वचन के माध्यम से, गुरु आपके मन के अंदर या आप जीव के अंदर जो विवेक पैदा करना चाह रहा है, वो विवेक यदि संतावास पढ़ने के बाद भी हमारे अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम पढ़ना नहीं जानते। इसलिए ऐसे सत्संग की जरूरत है मुझको, जहां इस चीज को समझाया जा सके और समझ में आ जाए। नहीं तो सत्संग क्या हुआ फिर? वो तो समय पास हो गया, मन में एक वो आ गया कि बड़ी बड़ी अच्छी बातें सुन के आया हूं। सत्संग का एक ही मात्र उद्देश्य है कि आपकी बुद्धि में विवेक जागृत करना, ताकि सांसारिक जीवन किस प्रकार दुख रूप है ये समझ में आ जाए, और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार आनंद रूप है ये समझ में आ जाए। तो दुख रूप जीवन का त्याग करके मैं आनंद रूप जीवन को अपनाऊंगा, कन्फ्यूजन थोड़ा ना होगा कि आध्यात्मिक जीवन अपनाया तो अध्यात्म में मन लगने लगा, सांसारिक जीवन में अपनाया तो संसार में मन लगने लगा, ये क्या बात है, ये तो कोई बात ही नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले जीव को ये सीखना होता है, ये जो मेरा मन है, मेरा है वो देखो, जो सबसे निकट है मेरे और जिस पर किसी का कमांड नहीं चलता, मेरा मन है और मेरे साथ मन की रिलेशनशिप बिल्कुल स्वतंत्र है, देह भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, मेरी ही देह है ये भी उसमें, मेरे और मन के रिलेशनशिप में कोई इंटरफेरेंस देह का नहीं है। तो मेरा जो मन है जिसको हम संसारी मन कहते हैं, क्योंकि अभी संसार के सोचता है संसारी मन है, तो ये मन इस जीव के लिए मुसीबत है। इसीलिए ये जीव अपने ही मन के कारण दुखी है और इस दुख का आरोपण करता है ये संसार के ऊपर, संसार के कारण मैं दुखी हूं, मन अनुकूल हर चीज मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उस मूर्ख को यह पता नहीं है कि ऐसा दिन इस जब से सृष्टि बनी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ कि मन अनुकूल संसार चल पड़े। तो इसीलिए वाणी का निर्णय बिल्कुल सत्य है, ये राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, और सुख कहाँ है फिर, मंगत सुखिया शोभया जिस शोभा पाई करतार, जो करतार की तरफ चला, जो ईश्वर की तरफ चला वही सुखी हो सका। साफ निर्णय है वाणी का। तो जब तक आपके अंदर ये विवेक नहीं है, समझ नहीं है कि मानसिक जीवन जो है, मन करके जो जीवन मैं जी रहा हूं संसार में देह के साथ, ये सारा दुख रूप संसार है, दुख रूप जीवन है, इसका परिणाम मानसिक क्लेश है, जीवन की विफलता है, तो फिर यह सोचता है फिर जीवन की सफलता क्या है। तब गुरु कहता है कि इस देह के अंदर जैसे मन व्याप्त है, इस देह के अंदर जैसे मन स्थित है, उसी प्रकार इस देह के अंदर, इस देह का संचालन करने वाला, इस देह को जीवित रखने वाला, तेरे प्रारब्ध के अनुसार तेरा जीवन चलाने वाला वो ईश्वर भी इस देह के अंदर ही मौजूद है, और वो तेरी देह में ऐसे व्याप्त है जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली व्याप्त है, गन्ने के अंदर चीनी व्याप्त है, दूध के अंदर घी व्याप्त है। यदि ठीक प्रोसेस अपनाया जाए, ठीक विधि अपनाई जाए गुरु के अनुसार, तो इस दूध से घी को अलग किया जा सकता है, मेहंदी से रंग को अलग किया जा सकता है, गन्ने से चीनी को अलग किया जा सकता है। इसी का नाम भक्ति है। उस ईश्वर को जो रोम रोम में रमा हुआ है, उसका मैं दर्शन कैसे कर सकूं, उसका मैं अनुभव कैसे कर सकूं, उसके लिए गुरु फिर आपको रास्ता बताता है कि जीवन में तूने बाहर कर्म कैसे करने हैं, लोक व्यवहार कैसे करना है, परिवार का पालन कैसे करना है, और अंदर ईश्वर की याद कैसे करनी है, इस देह से अलग करके उस ईश्वर को तूने कैसे जानना है, वो सारा प्रोसेस गुरु बताता है, उसके शास्त्र में यही लिखा होता है, और इसी चीज को अमल करके अपने जीवन के द्वारा वो दिखाता है। इसीलिए महाजी ने ये बात कही कि प्रेमी, इन्होंने एक बात भी ऐसी नहीं लिखी या कही जो अपने जीवन में घटाई ना हो। तो जो महाराज जी ने कहा है वो 100% प्रैक्टिकल बात की है, अनुभव की बात की है, तो उस अनुभव को मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ। गुरु ने वो स्थिति प्राप्त की थी जहाँ बेचैनी का प्रवेश कभी हो ही नहीं सकता। गुरु की बात यदि मानकर चलूं तो मेरी भी वही स्थिति हो सकती है कि मेरे अंदर बेचैनी का प्रवेश कभी होगा ही नहीं। वो कहते हैं कि मन की सत्ता ही भस्म हो जाती है। तो दुख का जो स्रोत है, जो मेरी इस देह के अंदर ही मौजूद है, जो मेरे निकट है, उसको कौन भस्म कर देता है? वो ईश्वर भस्म कर देता है, जो उसी प्रकार निकट है जिस प्रकार मन मेरे निकट है। अभी मैं मन की बात मान रहा हूँ, ईश्वर की बात नहीं मान रहा हूँ। वो अंतर्यामी ईश्वर ही बाहर गुरु रूप में प्रकट हुआ है, वो शरीर नहीं है मेरी तरह से। देखने में शरीर प्रतीत होता है। तो अब बताइए कि ऐसा गुरु जो हर दुख से मुझको मुक्त करने के लिए आया है, और मैं कितना मूर्ख हूं, उसकी बातों का क्या मखौल उड़ाता हूं मैं, कितनी लापरवाही से सुनता हूं, कितनी लापरवाही से पढ़ता हूं, वो जिंदगी होश ही नहीं। संसार की हर पढ़ाई जो कुछ भी आपने की है या करने की इच्छा है, उससे ज्यादा गंभीर होकर ये शास्त्र की पढ़ाई करने की जरूरत है। उसका मैं पाठ कर लेता हूं और एक वहम ओढ़ लेता हूं पाठ करने से मेरा कल्याण हो जाएगा, और गुरु लिख कर दे रहा है अपने शास्त्र में कि प्रेमी जैसा गुरु ने रास्ता बताया है उस पर चलना पड़ेगा। महाराज ने एक दिन यह भी कहा था, प्रेमी ये किस किस को पार लगाएंगे? लोग उनसे प्रार्थना करते थे, महाराज जी हमारा रोग दूर कर दो। तब महाराज जी यही कहते थे, प्रेमी ये अपना रोग दूर नहीं कर सके, तुम्हारा कैसे कर देंगे? गुरु बार बार तो कह रहा है पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भोग विलास के लिए पुरुषार्थ हम तो कितना करते हैं, पूरी आयु खर्च कर देते हैं, और गुरु की बात मानने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, उसकी बात को समझने के लिए गंभीरता तक नहीं हमारे अंदर नहीं है। दुनिया की पॉलिटिक्स, दुनिया की ईर्ष्या द्वेष, इसमें फंसे रहते हैं। जो संसार झूठा है उसमें जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो विवेक की हमारी ये हालत है, सही समझ की हमारी ये हालत है। आप देखें आपके अंदर दूर दूर तक कोई सही समझ है ही नहीं, और कितना अहंकार अंदर है, मैं कितना 30 मार्क हूं। तो इसीलिए जब तक आप गहराई से समता विलास का अध्ययन नहीं करोगे, हर वर्ण जो गुरु समझाना चाह रहा है वो नहीं समझ पाओगे जब तक आप, तब तक आप एक वहम में ही फंसे रहोगे। मैं तो साहब 10 बार समता विलास पढ़ चुका हूं और सब समझता हूं, इस वहम में आप सारे दिन फंसे रहोगे, सारी जिंदगी भ्रम में फंसे रहोगे। हर वर्ड एक विश्लेषण लेकर यूज किया गया है, हर वर्ड एक अर्थ लेकर यूज किया गया है। वो वर्ड पढ़ते ही वो पूरा अर्थ आपके सामने जब तक नहीं आता, तब तक आपको शास्त्र समझ में नहीं आ सकता। इसलिए पूरी जिंदगी इन शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत होती है। जैसे जैसे आपका विकास होता है, हर वर्ड की गहराई आपके सामने खुलने लगती है। इसलिए महाजी ने कई जगह इस बात को लिखा कि जब तक बुद्धि इस पर गहरा विचार नहीं करती, ये वर्ड सुन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, बातें साधारण सी है पढ़ने में, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बात पर जब तक बुद्धि गहरा विचार नहीं करती, इसका राज नहीं खुलने वाला कि ये गुरु वचन क्या कहने जा रहा है आपसे। इसीलिए ये तप चाहता है। अब मुझको भी यहां आते हुए 40 साल हो गए, और पहली बार जब 15 दिन के लिए आया था 1977 में, तब मेरा जो लाभ यहां हुआ था, जो लाभ मुझको प्राप्त हुआ था आध्यात्मिक दृष्टि से, तभी सोच लिया था इससे बढ़िया स्थान नहीं हो सकता। अब तो मैं डिफेंस में 1 महीने की छुट्टी मिला करती थी, अपनी छुट्टी का इस्तेमाल यहीं किया करूंगा मैं, बाकी घर के काम हो जाएंगे कोई बात नहीं, कुछ नुकसान हो जाएगा कुछ हो जाएंगे, लेकिन ये जिंदगी का नुकसान सहने लायक नहीं है। और तब से आज तक फिर वो संकल्प टूटा नहीं। रिटायरमेंट हो गया तो साल में 2 बार 1-1 महीने के लिए आने लगे, लेकिन जिंदगी की जो सबसे कीमती चीज थी उसके लिए तो सबसे ज्यादा सिंसियर होना चाहिए ना आपको। दुनिया विरोध कर रही है, आपको कैसे छोड़ दोगे? दुनिया तो अज्ञानी है, वो तो अपने स्वार्थ में सोच रही है। अकल तो तुम्हारे पास है ना, गुरु तो तुमने धारण किया है। यदि गुरु से आपने विवेक सीखा है तो आप अपने जीवन के प्रति सिंसियर हो गए या नहीं हो गए? या लोग क्या कह रहे हैं, परिवार क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, वो निर्णय जीवन के बारे में करेंगे। तो जो व्यक्ति सिंसियर है अपने जीवन के बारे में, जिसकी बुद्धि में विवेक है, सारी दुनिया एक तरफ क्यों ना हो जाए, वो अपने विवेक के अनुसार ही चलेगा। प्रहलाद को पता था कि ईश्वर सबसे ज्यादा कीमती चीज है, उसने मौत स्वीकार कर ली। पिता कहता रहा उन्हें कि मार दो, कोई बात नहीं, ईश्वर नहीं छोड़ूंगा। मीरा ने समझ लिया था कि ईश्वर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहर का प्याला पी लिया उसने, ईश्वर नहीं छोड़ा। जेल स्वीकार कर ली, ईश्वर नहीं छोड़ा। ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स है। ये दिन तो पता नहीं हमारे कब आएंगे, दो जन्म बाद आएंगे, तीन जन्म बाद आएंगे, लेकिन आज जहां खड़े हुए हैं वहां तो गुरु क्या कह रहा है? गुरु तो यही कह रहे हैं ना कि कम से कम एक घंटा सुबह, एक घंटा सायंकाल सिमरन करना लाजमी है। खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना, ये गुरु लिखकर दे रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? और वो भी आयु लिखकर दे रहा है, 15 वर्ष की आयु से 30 वर्ष की आयु तक। यदि इस बीच में मुझे होश आ गया है तो गुरु की ये बेसिक आज्ञा तो मैं पालन करूंगा ही। यदि गुरु धारण किया है तो ये तो मिनिमम आज्ञा है ना उसकी। अब मेरे लिए दिन 22 घंटे का बचा, बस मेरी घड़ी में दिन 22 घंटे का है, 24 घंटे का नहीं है। वो जो काम भी मैंने करना है, जो प्लानिंग करनी है जिंदगी की, 22 घंटे की करूंगा, 24 घंटे की प्लानिंग ही नहीं करूंगा मैं। और मैं दुनिया की नकल करता हूं, जो रात दिन कोहलू के बैल की तरह से पैसा कमाने में जुटे रहते हैं, जिनपे खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है, बीवी बच्चों से बात करने की भी फुर्सत नहीं है। क्यों साहब? काम करना है, काम पेंडिंग है। तो 24 घंटे की जिंदगी है उनकी, 48 घंटे का काम इकट्ठा कर लिया और फिर समझ रहे मैं बड़ा बुद्धिमान आदमी हूं, मैंने कितना काम फैला लिया। उस कोहलू के बैल को पता ही नहीं है कि तूने जिंदगी में मुसीबत पाल ली। तो ऐसे ऐसे मूर्ख इंसान दुनिया में पल रहे हैं और हमारे लिए वो आइडियल बने हुए हैं। हम कहते हैं ये तो आइडियल आदमी है संसार के अंदर, इसकी तो नकल जरूर करनी चाहिए, अकल तो गायब। इसलिए दुनिया को देख के अकल नहीं आती है, अकल किसी के अंदर भी आएगी तो गुरु को देखकर ही आएगी, शास्त्र को पढ़कर ही आएगी। हिम्मत आएगी तो वहीं से आएगी, क्योंकि वो जानता है कि संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना ईश्वर के हुक्म के। तो इसीलिए गुरु ने यदि कहा है मुझको कुछ करने के लिए, मैं तो वो करूंगा, दुनिया चाहे जितना भी विरोध करे। ना दुनिया का कुछ बनने वाला है, ना कुछ बिगड़ने वाला है, ये सारा का सारी सृष्टि प्रारब्ध के अधीन है। राम को महर्षि रमण कहते थे, जिस प्रकार मनुष्य का प्रारब्ध है उसी प्रकार संसार का भी प्रारब्ध है। और महर्षि जी क्या कह रहे हैं कि देह और संसार ये एक ही चीज है, देह करके संसार है। इसलिए महर्षि रमण की बात बिल्कुल ठीक है कि संसार में मेरी प्रेजेंस में जो भी घटनाक्रम घटना है, जिसका प्रभाव मेरे जीवन पर भी आएगा, वो मेरे प्रारब्ध के अधीन है। ये विज्ञान बड़ा गहरा हो जाता है यदि उस तरफ बढ़ोगे तो। तो सवाल ये है कि यदि मेरे अंदर ये विवेक है कि देह एक इक्विपमेंट की तरह से है, जिसको गीता कह रही है ईश्वरः सर्वभूतानां हृत देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को मैं संसार में भरमाता हूं। तो गीता साफ साफ इसको इंस्ट्रूमेंट बता रही है, यंत्र बता रही है, और मैं इसको अपना स्वरूप समझे बैठूंगा। ये मेरे पतन की पराकाष्ठा है, इसी को पशु जीवन बोलते हैं। जो मनुष्य अपने को देह करके जानता हो, मैं देह हूं, अपना कुछ बोध नहीं है उसको, वो पशु है।
वो पशु कर्म ही करेगा, फिर क्या करेगा? हंसी मजाक करेगा, ऐसी बातें करेगा दूसरे को दुख पहुंचे, उसको होश ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, उसकी गंभीर बुद्धि कहां से होगी? तो इसीलिए जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं, चाहे गीता पढ़ें चाहे समता विलास पढ़ें, तो सोचने को मजबूर हो जाते हैं। गीता भी कह रही है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृत देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सारे प्राणियों का मैं प्राणी हूं, सारे प्राणियों का जो ईश्वर है ना, वो उनके हृदय में विद्यमान है। हृदय का मतलब इस देह के अंदर मौजूद है, तो प्रभु मेरी इस देह के अंदर मौजूद है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार थोड़े से चिंतन के पश्चात मैं ये समझ गया कि मन इस देह के अंदर मौजूद है, मेरा मन देह के बाहर नहीं रहता, इस देह के अंदर मौजूद है। तो अब बताओ, मन मेरे लिए मुसीबत का कारण है, क्यों? क्योंकि इसमें संसार के संस्कार भरे पड़े हुए, सुख दुख के संस्कार भरे पड़े हुए, भोग विलास के संस्कार भरे पड़े हुए। ये मन मेरा मित्र बन सकता है यदि इस मन के अंदर मैं ईश्वर के संस्कार बना लूं, निष्काम सेवा के संस्कार बना लूं, निर्माणता के संस्कार बना लूं, ईश्वर भक्ति के संस्कार बना लूं। उसके लिए महाराज जी ने जो 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया, 5 सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्सिमरण, ये 5 नियम दिए, ये प्रोग्राम ही तो है। इस प्रोग्राम पर जब आप विवेक के साथ चलते हो, बिना विवेक के भी लोग चलते हैं, विवेक के साथ चलते हो, तो विवेक आएगा कहां से? सत्संग से तो विवेक आएगा, और सत्संग में ऐसे लोगों का संग जिनके अंदर विवेक है, और ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय जहां से विवेक सीखा जाता है, और ऐसा सत्संग जहां विवेक सिखाया जाता है, ये तीनों मिला के सत्संग बनते हैं। तो यदि मैं इस ज्ञान को सीखता हूँ और उसके अनुसार गुरु का प्रोग्राम यदि अपनाता हूँ, तो मेरे संस्कार बन जाएंगे, बनेंगे। फिर संसार में रहते हुए भी आपका मन उसमें फंसेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। जैसे तेल यदि पानी में डाल दो, तो पानी में रहने के पश्चात भी तेल पानी से अलग ही रहता है, तैरता रहता है उसके ऊपर। तो मेरे मन की भी यही स्थिति हो जाती है कि मन में सांसारिक क्रियाकलाप के संकल्प उठते तो हैं, लेकिन मैं उनको कर्तव्य भाव से करता हूं कि प्रभु ने प्रारब्ध दिया है, कर्तव्य दिया है, मैंने उसको कर्तव्य को कर देना, अपने प्रोग्राम से नहीं दिखता वो। मैं क्या करता हूं? कर्तव्य भाव से नहीं करता हूं, मैं मोह भाव से करता हूं, भोग भाव से करता हूं सारे कर्म। तो ये जो बिगड़े हुए संस्कार हैं, ये गहरे हो जाते हैं मेरे, और दुखी हो जाता हूं, अगले जन्म और बिगड़ जाते हैं मेरे। वर्तमान जन्म तो बिगड़ता ही है, अगले जन्म भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जो संस्कार बनाए हैं उसी के अनुसार आपको प्रारब्ध मिलना है, उसी के अनुसार आपको आपका ही मन है, मन तो वही जाना है, ट्रांसफर होना है। देह तो यहां जल जाएगी, वहां तो नई देह मिलेगी, लेकिन मन तो ये पुराना मिलेगा आपको। इसलिए ये जन्म मन के शोधन के लिए था, और मन का शोधन अध्यात्म मार्ग पर चलकर होता है, और अध्यात्म मार्ग पर वही है जिस पर गुरु ने चलकर दिखाया है। इसलिए उसके शास्त्र को समझना जीते जी ये मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि वहीं से विवेक मिलेगा। इसे लापरवाही नहीं चाहिए। जैसे कोई PhD स्कॉलर होता है तो लापरवाही से नहीं पढ़ता है, थीसिस लिखनी है उसने, प्रैक्टिकल थीसिस लिखनी है। तो उसी प्रकार से मैंने शास्त्र का स्वाध्याय करना होता है, तब मेरा ये विवेक पक्का होता है। फिर मैं ये बात नहीं कहता क्या करूं, जब तपोभूमि आता हूं तो मन लगता है मन यही करता रहूं, घर जाता हूं तो मन करता है कि वही करता रहूं, ऐसी मूर्खता की बातें फिर मैं नहीं करता। जिंदगी की समझ आ जाती है, समय का सदुपयोग करता हूं, और अध्यात्म मार्ग के प्रति मैं बहुत गंभीर हो जाता हूँ, वहाँ मैं लापरवाही नहीं करता, तब जाकर पता लगता है कि विश्वास कैसे पक्का होता है। ओम ब्रह्म सत्यम।